ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक चीज जो आप सबको पक्का हो गई होंगे, कौन सी? ओम शांति। हाँ, कोई भी स्टेज पर आए, कोई भी हाथ में माइक ले, सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? ओम शांति। शब्द तो पक्का हो गया है, पर उसका अर्थ भी पक्का हो जाना चाहिए। क्या है अर्थ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति सागर पिता के संतान हूँ। तीसरा, शांति मेरा घर है, शांति मेरा स्वधर्म है। ठीक है ना? क्योंकि धर्म में ताकत होती है, हर बात में धर्म की दुहाई देते हैं, तो इसलिए मैं आत्मा ओम शांति। मतलब ये पांच चीज़ों को भी पक्का करना है। दूसरी बात, अभी हमारे बीच में दीदी आ रही है, तो दुनिया में, खास करके इस कलियुगी दुनिया में, कोई भी खजाना हो तो उसको क्या करते हैं? बड़े संभाल के रखते हैं, ताला डाल के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। आजकल तो सोना भी नहीं पहनते हैं, वो सब लॉकर में छिपा छिपा के रखते हैं। लेकिन सबसे अमूल्य खजाना जो है, ज्ञान का खजाना, जो हमारे बड़ों के पास है, और उसमें कोई ताला नहीं है, कोई उसको छिपा के नहीं रखे हैं, और ही बुला बुला करके उसको देने के लिए कह रहे हैं। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है जो ऐसे खजानों से संपन्न, अनुभवों से संपन्न, स्वयं भगवान के हाथों से पले बड़े ऐसे महान तपस्वी दीदी जी पहुंच चुके हैं। तो सभी भाई बहने खड़े हो जाएंगे। ओम शांति। महान तपस्वी बाल ब्रह्मचारिणी, परमात्मा के हाथों से पले बड़े हमारी मातृस्वरूपा प्रभात स्मरणिया दीदी जी को हम इस सभा में तय दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कहते हैं अच्छे गुरु मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे स्टूडेंट मिलना वो बड़ी बात है। तो इसीलिए दीदी तो है ही खजानों से भरपूर, अनुभवों से भरपूर, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासा होगा, आपके मन में जो प्रश्न होगा, आपको जानने की जितनी इच्छा होगी, आपकी बुद्धि रूपी पात्र को जितना आप बड़ा करेंगे, उतना उसमें खजाना समाता जाएगा। तो आप सबकी ही दिल की बातें कुछ लेकर के हम दीदी जी से, दीदी जी के आगे रखेंगे, और दीदी जी अपने अनुभवों के आधार से, ज्ञान के आधार से, उन सारे बातों के हल हम सबको देंगे। ठीक है? तो आप सभी जो जो प्रश्न हम दीदी से पूछने जा रहे हैं, वो आपकी मन की, आपकी दिल की बातें हैं, तो इसीलिए आप उसको ध्यान से सुने, और फिर आपको यहीं से ही समाधान मिल जाएगी।
दीदी जी बीच बाद में कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं।
हाँ, देखो बाद में भी कुछ दीदी जी की तरफ से ओपन छुट्टी है। हाँ, आपके मन में अगर और भी कोई बात आए तो जरूर आप बताइए। हाँ, बचपन से ही दीदी जी को बाबा का ज्ञान मिला, आप सोच सकते हैं। पूरे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं दीदी जी, और मुंबई जैसे शहर में भी पले बड़े हैं, लेकिन भगवान को पहचान लिया तो उनके आगे ये सारी दुनिया कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में तो हम कहानियाँ सुनते हैं, मीरा को कृष्ण मिल गए तो उनको और कुछ सुझा नहीं, तो सचमुच ये सब मीराएं हैं जो भगवान के प्यार में दीवाना है। तो चलिए पहला प्रश्न दीदी जी के लिए, कि दीदी जी को भगवान मिला तो किस आधार पर दीदी ने ये विश्वास किया कि हाँ ये भगवान है, ये ही साधारण तन में आकर के इतना बड़ा महायज्ञ का कार्य चला रहे हैं? तो दीदी जी आप अपना अनुभव के आधार से बताइए कि आपको कैसे विश्वास हुआ कि सचमुच यही भगवान है और ये भगवान का कार्य है।
ओम शांति। ओम शांति, ओम प्रेम,
ओम प्रेम,
ओम प्रेम,
ओम
आनंद,
ओम आनंद।
ये सभा को देखते हैं और ये जिज्ञासा क्वेश्चन आपको पूछा तो 1957 की बात है। ये 1957 मेरी कॉलेज फ्रेंड ने और मेरी मासी, वो दोनों बीकेस के पास जाती थी, तो मुझे निमंत्रण दिया कि आपको भक्ति पसंद है, कथा कीर्तन में जाती हो, तो मैं आपको आज एक ऐसा विशेष सत्संग है उसमें ले जाती हूँ। तो मैं कथाएं बहुत सुनी है बचपन से। मैं जब 3 साल की थी तो हमारे वरांडे से, मतलब बालकनी से मंदिर दिखाई पड़ता था। हम ऊपर थे, मंदिर थोड़ा आरती होती थी, तो मुझे लगता था ये लाइट्स डांस कैसे कर रहे हैं, किनके सामने लाइट्स डांस कर रही है, ये मन का विचार था। पर अच्छा बहुत लगता था कि लाइट डांस कर रही है। तो मैंने दादी जी को, अपनी दादी को कहा, मैं इन लाइट्स का डांस देखना चाहती हूँ। शाम की आरती थी, वो मुझे लेके गई, बहुत अच्छा लगता था। तो रोज आरती होती थी, तो 7 आरतियाँ, जय जगदीश हरे, गणेश जी की, तुलसी जी की, शिव जी की, बहुत सारी आरतियाँ। बच्चे तो जल्दी याद कर लेते हैं, तो मुझे सारी आरतियाँ याद हो गई, अच्छा लगता था। तो सवेरे 10 बजे खड़े हो सामने, तो मंदिर के बरान उसमें आंगन में वो माता एक किताब उठाती थी और सब पढ़ रही होती थी। तो मेरे को होता था मैं भी जाके पढूं, पर क्या पढ़ रही है मालूम नहीं है, पर मैं जाके पढूं। मैं भी एक किताब उठा लेती थी, अब मालूम नहीं उल्टी या सीधी, पर तो उस समय का रिवाज था। आज से 69 ईयर पहले की बात है। उस समय माताएं वो गीता जो पढ़ती थी तो ज़ोर से पढ़ती थी आंगन में, बुज़ुर्ग माताएं। तो मैं साथ में जाके बैठ के वैसे खोलती थी और रिपीट करती थी वो, हे अर्जुन कहता है, मन बड़ा चंचल है, वायु के समान मन तेज है, हे भगवान वो कैसे जीता जा सकता है, ऐसे रिपीट करती थी मैं। वो पन्ना पढ़ती थी तो मैं भी पन्ना पढ़ती थी, तोते की तरह फॉलो करती। खैर उनको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। फिर दोपहर का सत्संग होता था, सत्संग माताएं करती थी, तो दादी जी हमारे को कहा इनको ले के आना। तो मुझे वो माताएं कथा करने के बाद थोड़ा जल हाथ में रखती थी और सब पर छिड़कती थी, वो पंजाब की बात है, होई वर्षा अमृत की, पीले संग ते बुक भर भर के, ये वर्षा अमृत की है, जी भर के अमृत पीते रहो, ऐसे छिड़कते थे। वो मुझे बड़ा आनंद आता था, वो पानी अमृत छिड़क रही हूँ। उस समय इसका महत्व पता नहीं था, ठीक है, फिर तो पढ़ने में बिजी हो गई, तो हमारी एजुकेशन बहुत फास्ट हुई। फास्ट हुई क्योंकि लड़कियों का स्कूल गांव में पाँचवीं तक था, तो हमको फिर लड़कों के स्कूल में पढ़ना था, तो हमको एक एक साल में दो दो क्लासेस करनी पड़ी, ताकि हमारे भाई जिस समय पढ़ रहे हैं कॉलेज में तब हम पढ़ सकें। तो मैं उस समय बीए कर रही थी जब मैं ज्ञान में, हमारे फादर की ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई, वो इंजीनियर थे। तो जब दिल्ली में आए तो एक्चुअली मुझे वो जो जाती थी ना कॉलेज में, रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी, बहुत गरीब थे लोग, और आदतें थी खराब, शराब पीना, झगड़ा करना, घर की सफाई नहीं है। तो मुझे होता था मैं इनको मदद करूं, सर्दी में कपड़े नहीं है, ठंड में सुकड़ रहे हैं, तो ब्लैंकेट दे देती, कभी स्वेटर दे दे दिए। थोड़े दिनों के बाद देखो तो वो स्वेटर या ब्लैंकेट है ही नहीं। भाई क्या करते हो आप उन कपड़ों का, बेच के शराब पी लेते थे, तो अंदर खुशी नहीं होती थी। एक दिन मेरी ग्रैंड मदर ने कहा तुमको इनको सुख देने का विचार है तो रोटी दो ना, हम बना के भेज देंगे। तो बाय चांस क्या हुआ कि उस दिन एक बुज़ुर्ग भाई आता था झोला लेके कॉलोनी से रोटी इकट्ठा करता था, वो रोटी इकट्ठी करके ढाबे में बेच देता था, वो भी शराब पीता था। तो वही खाना दो तो भी ख़राब एक्शन जा रहा है, कपड़ा दो तो भी ख़राब यूज़ हो रहा है। तो खुशी नहीं थी पर शौक था कि मैं सेवा करूं। तो मैं जब दिल्ली में हमारे फादर की ट्रांसफ़र हुई तो थोड़ा समय हमारी मासी हमारे घर में आके रही थी। उसके बीच में लंबी कहानी है कि मुझे थोड़ा समय तक जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी में ही मुझे हेडमिस्ट्रेस लड़कियों का पाँचवीं तक क्लास था, क्योंकि मेरी एजुकेशन फास्ट थी। तो वहाँ के जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा हमको मदद चाहिए, तो आप 3 महीना, बड़ी बहन की वो मिस मेहता की शादी होने वाली है और वो तो चली जाएगी, तो हमको 3 महीना आप ये सेवा करो। तो जब हम तो हमारी माता जी रह गई गांव में हमारे साथ, और हमारे अंकल हमारे फादर आ गए। तो मैं वापस जब हम दिल्ली में आए तो मैं एक दिन वॉक करने गई मासी के साथ, मैंने दिल की बात सुनाई कि मुझे सेवा का बहुत शौक है पर खुशी नहीं है, सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। तो वह कहती है तुम ये सोशल वर्कर बनती हो तो खुशी तो नहीं होती है, तुम स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बन जाओ। मैंने कहा स्पिरिचुअल सोशल वर्कर क्या होता है, तो उसने कहा देखो तुम उनको मदद करती हो, उनका जीवन तो नहीं बदलता है ना। स्पिरिचुअल सोशल वर्कर ने का मतलब ये है कि आप उनकी जो मन आत्मा कमज़ोर है उनकी आत्मा में शक्ति भरो और उनके संस्कारों को बदलने के लिए उनको कुछ अच्छी बातें सिखाओ, तो उनमें ताकत आएगी जीवन बदलने की। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा कोई स्कूल है, ऐसी कोई जगह है जहाँ सोशल स्पिरिचुअल सोशल सिखाया वर्कर बनाया जाए। तो उसने कहा कि मेरे मकान में जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में ही, नीचे ब्रह्मा कुमारियाँ रहती हैं, मैं देखती हूँ लोग बहुत दुखी मन से आते हैं, परेशान होते हैं, माँ बाप दुखी हैं, बच्चे का चरित्र ठीक नहीं है। तो वो जब लोग आते हैं तो आते हैं बड़े मुरझाए हुए चेहरे से, थोड़े ही दिनों में उनका चेहरा चमक जाता है, उनका जीवन बदल जाता है, यही नहीं लगता कि ये वही व्यक्ति हैं। तो आप तो उनको डिपेंडेंट बना रही हो, आदतें नहीं मिट रही हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल सोशल का मतलब है कि आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर है, इसीलिए नहीं अपने आप को कंट्रोल कर सकते। आत्मा में शक्ति होते भरो, आत्मा को समझ दो, आत्मा को लक्ष्य दो कि तुमको अपना जीवन कैसे सुखी बनाना है। तो ये बात अच्छी लगी तो मेरे को, मैंने पूछा वो बहने इस एरिया में कहाँ रहती है जहाँ हम रहते थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, दूसरी बात क्या टच किया मुझे, मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है और समाज कहता है शादी करनी। अभी तो 16 ही साल की थी मैं, तो मेरे फादर ने कहा, अभी दादी जी कहती थी शादी के लिए पूरी तैयारी करो, हमारे फादर ने कहा अभी इसका पढ़ाई और पढ़ने दो, थोड़ा 4 साल छहर जाओ फिर देखेंगे। अच्छा, तो मैंने मासी को ये कहा कि समाज का और हमारी दादी का ये है कि शादी जल्दी होनी चाहिए कुमारी की, और अगर नहीं करते हैं तो सबकी दृष्टि में पता नहीं लड़की का चरित्र कैसा है, कुछ बात हुई होगी। तो ये मुझे बहुत अंदर चिंतन चलता है और स्वमान जागृत है कि मुझे चरित्र पर बहुत अपने विश्वास था। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियाँ में जीवन में ऐसी पवित्रता है, दृष्टि में इतनी दिव्यता है कि जिसको भी वो दृष्टि देती हैं उनके अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत होती है, जैसे कि जगी बुझी हुई ज्योति जाग जाती है। तो मेरे को तो आया, मैं जाऊँगा ब्रह्मा कुमारियों के पास और मैं उनसे दृष्टि लूँ तो मेरे में इतनी शक्ति आ जावे, मैं जिसको दूँ देखूँ दृष्टि दूँ वो पवित्र बन जावे। ये था, अंदर तीर लग गया मुझे इस बात का। हम वॉक करने गए दूसरे दिन भाइयों के साथ, हम सेंटर पर गए तो उस समय दिल्ली में प्रकाशमणि दादी जी थी। हमको वास्तव में जाना तो वॉक कर नहीं था, एक लक्ष्य रखा था डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, पर मासी ने बताया था कि सेंटर यहाँ पर है, इसी ख्याल से उस रोड पर गए थे। हम गए, चित्र लगे हुए थे तो थोड़ा सा उन्होंने समझाया, मैं बराबर देखूं तो मुझे उस समय तो कुछ महसूस नहीं हुआ, उस समय कुछ नहीं महसूस हुआ। हाँ, बहन जी ने समझाया कल्प वृक्ष है, ये चित्र ये है, और हमारी बहन साथ में गई तो उसने कहा अच्छा ये फिजियोलॉजी भी समझाते हैं, हाँ या हार्ट की आर्टरी, कल्प वृक्ष को देख के उसने कहा हार्ट की आर्टरी है वो कल्प वृक्ष का चित्र है। मतलब समय कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़े समय के बाद वो हमारी कॉलेज की फ्रेंड ने कहा चलो सत्संग में, तो मुझे मालूम नहीं था कि यही ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तो उस समय ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए हुए थे, तो उस छत पर सत्संग था, संग सत्संग हो रहा था, खुला खुली छत है, इंडिया में तो खुली होती है। तो मैं जा कर के बैठी तो सामने बाबा, मैं तो आंखें बंद करके बैठ गई कि महात्मा जी जब आएंगे तो सभी कीर्तन करेंगे, पर ये लोग तो चुपचाप बैठे हैं, आंखें खोल के बैठे हैं, कोई कीर्तन नहीं है, कोई भजन नहीं है, ये ऐसे क्या कर रहे हैं बैठे हुए। पर मैं तो आंख बंद करके बैठ गई भगवान का ध्यान करना ऐसा समझ के बैठ गई। जब मैंने अचानक आँख खोली तो देखा बाबा ब्रह्मा बाबा वो सामने बैठे थे। किस समय आए, क्योंकि कोई जय गुरु जी महाराज या पैर पड़ना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ये तो जैसे कि बाबा आकर के सत्संग करते। मैंने देखा तो महात्मा जी की बॉडी पर लाइट थी, मैंने समझा महात्मा जी है, गुरु जी है, हमेशा ऐसा ही समझा था कि गुरु जी आके कथा करते। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा इन पर ही लाइट क्यों है, अगर सन का रिफ्लेक्शन है तो इन पर ही क्यों है, औरों पर क्यों नहीं है। ये सितंबर महीना 57 की बात, मैंने जगह बदली किया तो भी वहाँ बॉडी की ट्रांसलाइट की तरह चित्र दिखाई पड़ा। फिर पिंच किया अपने आप को कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, और ये लाइट क्यों दिखाई दे रही मुझे। वो लाइट में आकर्षण बहुत था, देखने को भी मन करता था, जैसे कि मैग्नेटिक एनर्जी मुझे खींच रही है, यानी अच्छा लग रहा था बहुत। दृष्टि का मालूम नहीं था कि दृष्टि क्या होती है, तो आँख बंद करूं तो मून लाइट की तरह वो वाइब्रेशंस मेरे पास, शीतलता का अनुभव, आँख खोलूं तो बहुत एक मैं पावरफुल दृष्टि। तो मैंने जैसे गर्मी का मौसम होता है और पसीना आ रहा होता है तो ठंडी हवा का झोंका बॉडी में सिरहन पैदा करता है, तो ये तो मोटे रूप का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे अंदर से बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था, यानी कुछ चीज़ बहुत अच्छी टच कर रही है। ये बच्चों की तरह आँख खोलूँ और बंद करूँ, खोलूँ और बंद करूँ, जैसे खेल कर रही हूँ जैसे। तो अचानक मेरे मन में संकल्प आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती है, हमने सुना था, कभी गए तो थी नहीं ब्रह्मा कुमारी में, तो ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती है, ये ब्रह्मा कुमारी का गुरु मेरे पर जादू कर रहे हैं। तो अब मेरी मदर भी साथ थी, वो तो आगे जाके बैठ गई थी, तो मैंने कहा देखो मेरी मदर कहाँ बैठी है, वो तो बिल्कुल आगे बैठी थी। तो थोड़ा लगा कि हाँ मगर मुझे कुछ जादू हो गया, तो मेरी माँ साथ में है। अब वो डर अंदर जो आया है, डाउट पड़ा, माँ याद आई, वो जो अनुभव था वो गुम हो गया। अब वो मुझे लाइट नहीं नज़र आ रही, ये महात्मा जी बैठे कुछ बोल रहे। मैंने सोचा सुना देखो महात्मा जी क्या बोलते हैं, तो हर दो सेंटेंस के बाद लाइट शब्द ही बोल रहे थे। मैंने कहा जी महात्मा जी हैं, ना रामायण की कथा कर रहे हैं, ना भागवत की कथा कर रहे हैं, ना गरुड़ पुराण की कथा कर रहे हैं, कथाएँ मैंने बहुत सुनी थी, पता नहीं लाइट क्या ये खाते भी लाइट होंगे, क्या ये पैदा भी लाइट हुए होंगे। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे, मैं बोर होने लगी कि अभी तो नहीं समझ में आता मैं जाऊं, पर मेरी मदर को मैंने ले जाना था, वो इतनी मस्ती से सुन रही थी, बहुत अच्छी तरह से उनकी आंखें चमक रही थी, चेहरा मुस्करा रहा था। मैंने कोशिश की डाइवर्ट करने की, पर वो उसी में ही मस्त थी। मैं वेट किया जब तक कथा ख़त्म हो, मैंने तो कथा ही समझी थी। घर गए तो मैं रास्ते में मदर को बोला कि अजीब महात्मा जी थे, वो लाइक अपना अनुभव सुनाया। मैंने कहा वो कथा क्या की कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बोरिंग लगा मुझे। माता जी ने कहा कि वो तो इतना अच्छी बात सुनाई, गीता ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, यह आबादी क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों कई मनुष्य दुखी हैं सुखी हैं, कर्मों की कहानी क्या है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा स्थान है।
देखो आत्मा में संस्कार कैसे जाती है, हाँ नोट किया ना। 3 साल के बच्चे रुचि किस में है, भजन कीर्तन में है, आरती में है। और जैसे बाबा कहते ना पूर्व जन्म के संस्कार, तो बचपन से ही वो रुचि दिखाई दे रही थी। और दूसरी बड़ी बात थी दीदी में कि पवित्रता की धारणा, हाँ जिस दुनिया में पवित्रता के बगैर जीना मुश्किल समझते हैं, और वो संस्कार दीदी की नेचुरल रही तो आज ये स्थान मिले। जी दीदी,
तो फिर क्या है कि दूसरे दिन तो हमारी मदर ने कहा मैंने तो लाइट नहीं देखी। उन्होंने लाइट नहीं देखी है और मैंने ज्ञान नहीं समझा। उन्होंने कहा तो मेरे कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया इसमें एक ही कथा में। मैं तो यही मेरा मार्ग है इनका, मैं तो जरूर आगे आऊंगी। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं समझा। दूसरे दिन अब हम गए तो दोनों एक ही जगह, उनको लाइट नहीं नजर आई, मुझे ज्ञान नहीं समझ आया। दूसरे दिन कॉलेज की जो फ्रेंड थी उससे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपके गुरुजी में लाइट कहाँ से आई थी। उन्होंने कहा परमात्मा, गॉड इज लाइट, लाइट और परमात्मा इनके तन में आके बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं तो आकाशवाणी होती है, बिजली गड़गड़ाहट करती है, और भगवान किसी में प्रवेश करे तो शरीर ही जल जाएगा। वो तो महात्मा जी तो बड़े आराम से कथा सुना रहे थे, मतलब कुछ बोल रहे थे। तो उसने कहा कि भगवान की शक्ति ये नहीं है कि वो किसी को शरीर जलावे, भगवान शरीर के द्वारा जो मनुष्यात आत्माएं है पाप का कर्म करती हैं तो परमात्मा शक्ति देते हैं, वो जो पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। मनुष्य नहीं भस्म होता, मनुष्य अभिमान में विकारों के वश होकर जो पाप कर्म कर्म करते हैं तो मनुष्य के पाप पाप कर्म भस्म होते हैं योग की शक्ति से। वो लाइट परमात्मा, मैंने कहा पर मैंने कहा अच्छा चलो परमात्मा आए भी सही। वो महात्मा जी तो बड़े आराम से बैठे थे, शरीर मतलब कांपना चाहिए, इतनी बड़ी लाइट प्रवेश करती है। हमारे गांव में किसी के सिर में भगवती आती थी तो सिर खुल जाता था, आंखें लाल लाल हो जाती थी, बड़ा भयानक रूप हो जाता था। ये महात्मा जी तो बड़े शीतल रूप से बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा हमारा परम पिता है, परम पिता पा परमात्मा है। तो पिता अपने बच्चों को घबराने जलाएंगे थोड़ा ही, पिता तो अपने बच्चों से मीठी बात ही बोलेंगे ना। तो मैंने कहा पर फिर भी शक्ति तो दिखाई पड़नी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा है शरीर को कांपने की शक्ति नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मेरे हाथ में रुमाल था, उसने कहा, सुदेश अगर ये तुम्हारा रुमाल गिर जाए तो उठाओगी? मैंने कहा दो, उठा के यूज़ कर लूँगी, धुलाई करके यूज़ करूँगी। कहा तुम 10-15 किलो वजन उठा सकती हो? मैंने कहा मेरे में ताकत है। मैंने ऐसे कर सूटकेस, हम ट्रेन में जाते हैं कुली तो पटक के चला जाता है, हम अपने आप सेट करते हैं, मेरे पास ताकत है इतनी। उसने कहा तुम रुमाल उठाती हो तो तुमने मसल्स क्यों नहीं यूज़ की, ताकत क्यों नहीं यूज़ की? उसका नाम सुभाष था। मैंने कहा सुभाष तू समझती है मैं पागल हूँ, अब मैं रुमाल उठाऊँगी तो मसल्स क्यों यूज़ क्यों करूँ, रुमाल तो ऐसे उठा लेंगे। तो वो फिर मेरे को कहती है बड़े प्यार से, सुदेश तू समझती है भगवान पागल है, भगवान पागल है, उसको इतनी समझ नहीं है कि मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ तो प्रेम से बात करूँगा, आवाज़ से क्यों बात करूँगा। तो मैंने कहा मैं तो आंखें बंद कर बैठी थी, अब मैं कल जाऊँगी आंखें खोल के बैठूँ। दूसरे दिन गई तो बाबा तो चले गए थे, वो पंजाब या कहाँ जा रहे थे। तो मेरे को वो इंटरेस्ट था कि वो लाइट कैसे प्रवेश करती है और वो लाइट परमात्मा आती कहाँ से है। लाइट तो मैंने देखी पर मैंने प्रवेश करते हुए नहीं दिखी। तो अब बाबा एक तीन वीक, क्योंकि ठंड का मौसम होता था तो वो बॉम्बे या पंजाब या कहाँ जाते थे। तो मैंने रोज़ कॉलेज के बाद जाना शुरू कर दिया। अब दोपहर का टाइम हो, 2 बजे मैं पहुँचती थी, बहनों के रेस्ट करने का टाइम। खैर वहाँ रिसेप्शन पर ही एक थोड़ा सा शेड थे, वहाँ टेबल और बेंच था, कुर्सी थी, मैं वो उठा के किताब पढ़ती थी और नोट्स लेती थी, लिटरेचर और मुरली भी पढ़ी होती थी। तो मैं जितना जितना मुरली पढ़ती गई, नोट्स लेती गई, मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान समझ में आने लगाएगा। 1.5 महीने के बाद बाबा, मैंने मिस नहीं किया, कोई बहन ने कोर्स नहीं कराया है, क्योंकि वो तो 2 बजे कौन, 2:30 बजे कौन, नहीं रेस्ट का टाइम है, सब लोग सवेरे उठते हैं। तो मैं बैठी थी तो दो बहनें, ये विमला जो चांदनी चौक वाली है वो और उनकी बहन कृष्णा, वो आई। तो मैं तो अपनी जगह हमेशा पर जहाँ बैठती थी रिसेप्शन पर, कहा तुम बाबा से मिलने आई हो? मैं कहा नहीं, बाबा तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो आती हूँ नोट्स लेकर के चली जाती हूँ, जब बाबा आएंगे तो मिलूँगी। तो उसने कहा बाबा तो आ गए, आज सवेरे आए हैं, हम उनसे मिलने आएंगे। तो मैंने बहन को कहा, टीचर को, दीदी ये बाबा से मिलने के लिए आए हैं, मैं भी अब बाबा से मिल के जाऊँगी। उसने कहा कि आज तो बाबा थक के आए हैं। तो ट्रेन में जर्नी होती थी, कल सवेरे तुम आ जाना, ये बहनें तो रहेंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा अभी उनको रेस्ट करने जाना है, थके हुए हैं। मैं जैसे रोज़ मुरली पढ़ती थी, योग का बहुत अच्छा अनुभव होता था, योग किया। इतने में मुझे 2 महीने में ये विश्वास पक्का हो गया था कि परमात्मा निराकार है, उनको शरीर नहीं है, वो परम ज्योति है, और ज्योतिर्लिंगम जो है वो परमात्मा शिव की शंभू हैं, वो जन्म नहीं लेते थे, वो खुद भूमि पर आते हैं और ये शरीर भी धरती है, इस शरीर में का आधार रह लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह हमारी माता जी गीता सुनाती थी तो मैं सुना था, उसमें था कि मैं यह पर काया में प्रवेश करता हूँ, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करता हूँ तो मुझे लोग नहीं पहचानते हैं, तुच्छ समझ कर गाली देते हैं। तो हमने तो समझा वो श्री कृष्ण जी थे, परंतु भगवानों वाच्य, तो ये बात अनुभव तो नहीं थी। खैर मैं विश्वास हो गया तो क्या आते हैं वो, तो मैं बैठी योग किया, मुरली पड़ी, मैं जा रही थी और योग में मैंने कहा परमात्मा भगवान आप सचमुच भगवान हो और इस ब्रह्मा जी के तन बैठे हो। महात्मा जी तब तक मैं महात्मा जी समझती, इनके तन में बैठे हो और ये बहन जी कहती है कि नहीं मिल सकते, तो क्या आप मुझे नहीं आके मिल सकते, वो ब्रह्मा जी को नीचे ले आओ ना। मैं बड़े हक से और निश्चय से बोला, मैं योग पूरा हुआ, मैंने किताब अपनी बंद की, इतनी मोटी बुक बना ली थी, रोज नोट्स लेती थी। जैसे ही मैं जाने लगी तो बाबा बैक साइड साइड से कोठी के सामने आ गए। जैसे ही बाबा सामने आए तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, बाबा छोटा बच्चा जैसे बोलते हैं ना, मैं ऐसे बाबा को जाके छोटा चिपक गए। बाबा ने कहा बच्ची बच्ची तुम कल आ जाना, कोई नहीं तुमको रोकेगा। अरे आपने मेरी आवाज़ सुनी, भगवान मेरी आवाज़ सुन के आए। तो वो जो बच्ची शब्द का है ना, बच्ची, वो एक मेरे को जैसे कि न्यू लाइफ होती है ना, करंट लगता है, वो एकदम मिलन का अनुभव जैसे रियल ऐसा महसूस हुआ। तो कहा बच्ची कोई नहीं तुमको रोके, तुमको। दूसरे दिन सवेरे मैं आई तो क्लास तो ख़त्म हो जाती थी, मुरली तो ख़त्म हो, तो बाबा ने ऐसे ऐसे नोट किया। तो दीदी जी छोटा एक कमरा था नीचे ही, वहाँ पर मुरली रिवाइज करती थी बाबा के साथ, क्वेश्चन आंसर पूछती थी, तो मैं भी वहाँ बैठने लगी। धीरे धीरे मुझे सारी बात समझ में आने लगी। तो वो जो बाबा समझाते थे, वो महसूस होता था कि ये व्यक्ति नहीं सुना रहे, ये जो ज्ञान की बात है, जो हमने बहुत क्वेश्चन थे हमारे, वो मुरली में अपने आप ही कन्वर्सेशन में क्लियर हो जाते थे। एक दिन बाबा ने मेरा टेस्ट लिया, कहा कि तुम छिप के आती हो, बाप को नहीं बताया ने, बताया मैं आप तो आपके बाप को चिट्ठी लिखूंगा तुम्हारे फादर को कि आपकी लड़की हमारे पास आती आती है। पर मुझे इतना निश्चय और नशा था, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आता है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, आप नहीं जानते हो कि मैं आपकी बच्ची हूँ आती हूँ। बाबा ने कहा बड़ी बहादुर हो, बड़ी मजबूत हो। वो वरदान मिल गया, वो इतना गहरा संबंध महसूस हुआ, हक से बाबा ने बोला और हक से मैंने बोला। तो ऐसे ये था पहला, तो ये फिर ये पहला अनुभव था। फिर मधुबन में तो पता है कितने बारी गए, बाबा दिल्ली में बहुत बारी आए, तो बहुत सारी बातों से निश्चय मतलब, पक्का होता गया
मतलब दीदी
कि परमात्मा इंसान नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार परम परमात्मा शिव है और वो ज्योति स्वरूप है।
मतलब अनुभव के आधार से दीदी का निश्चय हुआ कि ये कोई इंसान का कार्य नहीं है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये भगवान है। कहते हैं ना, जिसको जो चाहिए तो भगवान उनको वही देता है। माँ बेटे दोनों साथ थे, पर एक को ज्ञान समझ में आए और एक को लाइट दिखाई दे। हाँ, तो देखो ये सब भगवान के कार्य है। तो फिर जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है तो अनुभव तो होता जाता है। तो बाबा को भी बहुत बहुत थैंक्स। और दीदी भले अभी बड़ी उम्र की हो गई है, पर अभी दीदी जी जैसे अनुभव सुना रहे थे तो हमको लग रहा था अभी भी दीदी बच्ची है, अभी भी दीदी बाबा को पकड़ रही है। तो वही है, बाबा जो रोज मुरली में एक शब्द यूज करते, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, भले शरीर की आयु क्या भी हो जाए लेकिन बुद्धि में हमेशा ही रहता है कि हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। दूसरा प्रश्न है दीदी कि इस ज्ञान मार्ग में या राज्य करने में सबसे बड़ी जो धारणा की बातें हैं वो आत्म अभिमानी स्थिति बनाना। और हमारे जन्म से ही क्या, कई जन्मों से ये आदत है अपने को देह समझना, दही की दृष्टि से देखना। तो लेकिन जब हम राज्यों के बने और बाबा को याद करें तो ये आत्म अभिमानी स्थिति बनाने के लिए बड़ी मेहनत की बात है। तो कैसे इसको हम घर गृहस्थी में रहते हुए, कारोबार करते हुए, अपने नाम मान शान को लेके चलते हुए अपनी स्थिति बना पाए, उस पर थोड़ा सा।
तो पहली बात ये है कि हमको माँ बाप ने बचपन से ये पक्का कराया, तू लड़की है तू लड़की है जी। मेरे को अगर कहते तू लड़का है तो मैं समझती मैं लड़का हूँ, तुम सुदेश हो, नाम पक्का कराया है। तो अपने बच्चे को कितने बारी जो भी कोई घर में आता है बच्चे से यही पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे को 10 बारी 15 बारी रिपीट करना पड़ता है। और नहीं रिपीट करते तो कहते हैं अरे तुमको अपना नाम भी याद नहीं है, और शीशा भी रोज दिखाते हैं तैयार करके, तो रोज अपना फेस देखते और रोज अपना नाम सुनते, पक्का हो गया ना। आज अगर 5000 का कभी फोटो मेरे सामने आवे आवे तो मैं फौरन पहचानूंगी ये मेरा फोटो है, क्योंकि मैंने पक्का कर लिया ये मेरा फोटो है। तो ऐसे जैसे शरीर का अभ्यास पक्का किया ऐसे मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, मैं सोच तो सकती हूँ ना, मैं आत्मा हूँ। मैं समझ गया, पहले ये विश्वास है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। हमने पहले दिन आपको बताया था शरीर ने आत्मा नहीं छोड़ी, छोड़ी आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आँख नहीं हूँ मेरी आँख है, मैं कुर्सी नहीं हूँ मैं कुर्सी पर बैठी हूँ। तो ये तो मैंने आधार लिया हुआ है, कपड़ा मैं नहीं हूँ कपड़ा मैंने पहना हुआ है। तो जैसे हमने ये पक्का शरीर का अभ्यास किया ऐसे चलते फिरते फिर उठते बैठते खाते पीते मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये ब्रह्मा बाबा मैंने ये प्रैक्टिस की। बच्चे का नाम लिख करके कॉपी पर, वाइफ का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा आत्मा यशोदा आत्मा, बच्चे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा नारायण आत्मा, बेटी का नाम आत्मा। तो बाबा ने भी प्रैक्टिस की, हमको भी घर में रहते हुए, या मेरा भाई है पर आत्मा है, मेरा फादर है पर आत्मा है, वो शरीर का रिश्ता है, हमारा आत्मा का रिश्ता, हम एक पिता परमात्मा की संतान है, तो हम एक घर में परमात्मा के बच्चे बच्चे हैं। शरीर बड़ा है आत्मा तो मोटी छोटी नहीं होती, शरीर के हिसाब से संबंध है। और हमको कर्म कर्म करते हुए ये याद करना मुश्किल तो नहीं है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन मैन परफेक्ट। तो पहले निश्चय बुद्धि, खाली इच्छा नहीं, खाली संकल्प नहीं, आत्माभिमानी बनने बनना है। तो आत्मा के साथ बुद्धि में ज्ञान पहले बैठे हो, निश्चय हो, और उसी कॉन्शियस से कर्म करूं, गुण भरूं अपने में। तो ज्ञान ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद सत्यता रहम, ये गुण कैसे कर्म कर रहे हैं। तो मेरा संस्कार परमात्मा के संस्कार से खींचेगा, या मेरा परमात्मा का संस्कार मेरे संस्कार को खींचेगा, तो मुझे योग लग जाएगा ना, उससे शक्ति मिलेगी आत्मा को। और दूसरी बात है कि ये प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है, ये संन्यास मार्ग नहीं है। घर ग्रस्त में रहते हुए ये सेवा करनी है, जंगल नहीं बना। अगर घर छोड़ के सब लोग जंगल में चले जावे तो जंगल शहर बन जाएगा, शहर जंगल बन जाएगा। घर में रहते, परिवार में रहते, कमल फूल की तरह रहना है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है, इसलिए कहते हैं कमल नैन कमल हृदय है, चरण कमल हस्त कमल। काम से कर करो पर उसका प्रभाव ना पड़े, वह आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर से कर्म कर्म करेंगे। तो पहले बनाना है जीवन कमल फूल समान। फिर संसार में बहुत सारी बातें हैं, फिर जीवन बनाना है गुलाब समान। गुलाब का कमल में खुशबू नहीं होती, कीचड़ में रहता है पर न्यारा रहता है। कीचड़ बहुत है और कमल दो तीन खिले होते हैं, तो पूरा शरीर मिट्टी और पानी से भरा है ना, इसमें मैं आत्मा कमल फूल समूह। तो लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर दिखाते हैं, अब इतनी बड़ी औरत का कमल पर कैसे बैठेगी। नारायण जी के हाथ में कमल है, शंख चक्र गदा पद्म धारी, जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कमल का फूल है। तो दिव्यता मतलब शरीर में रहो, संसार में रहो, पर कमल फूल समान रहो। संसार कांटों का जंगल है पर रूहानियत की खुशबू अपने में भरो, तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और योग कैसे लगे परमात्मा के साथ, तो सबसे बड़ी बात है कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करते परमात्मा की याद का कोई ना कोई तरीका अपनाओ। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग बादाम खाते हो, बादाम खाते हैं ना, भिगो के खाते हैं बादाम का छिलका। बादाम कहता है देख तेरी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी है, अब तुम चाकू से छिलका उतारते हो क्या?
हाथ से।
क्या करते हैं?
हाथ से
उतारते हैं सूखा बादाम, हाथ से छिलका उतारते
नहीं, वो चाकू से।
क्या करना पड़ता है?
भिगोना पड़ता है,
पानी में भिगोना पड़ता है, छिलका उतर जाता है। तो परमात्म पे मैं अपने आप को डुबो दो, परम पिता पर परमात्मा प्यार का सागर, मैं उसकी प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा सबसे प्रेम करता है, मुझे भी प्रेम करता है, मैं भी उसको आत्मा समझ करके परमात्मा पिता समझ के प्यार कर रही हूँ। तो ये मेरा छिलका
उतर रहा है
भाई, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हम कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हे परमात्मा मेरे दुख को हरो, पर उसके प्यार में डूब जाएंगे कि वो परमात्मा हमारे मन की बात को सुनता है, दुखी होके नहीं, संबंध जोड़ के, भिखारी बन के नहीं, अधिकारी बन के याद के।
पूरे
मैं बच्चा हूँ,
पूरे संसार घूम के आ जाइए, सारी किताब पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको इतनी सहज टेक्निक नहीं मिलेगी कि इस देह अभिमान को कैसे भूलना है। परमात्मा के प्रेम के पानी में भीग जाओ और ये देह अभिमान की छिलका सहज रीति से निकल जाएगा। दीदी के लिए एक जोरदार ताली दीजिए।
दूसरी बात, परेशानी क्यों होती है कि मन में इसकी बात उसकी बात जिसने सुनाई ना जी। वो याद आ रही है, परमात्मा याद नहीं आ रहा है। काजू खाते हो तो काजू कहता है देख तेरा तेरे कान की शक्ल मेरे कान की शक्ल जैसी है।
काजू से जो तो
काम काज की बात सुन, काजू कहता है बेकार की बात ना सुन, काम काज की बात सुन, तो व्यर्थ परेशान नहीं होंगे।
नहीं होंगे बहुत।
अखरोट कहता है देख तेरे हिस्से दिमाग के दो हिस्से हैं। तो आत्मिक स्थिति में शरीर द्वारा कर्म कर, इमोशनल भी और रैशनल भी, प्यार भी हो और विवेक शक्ति भी हो। पिस्ता कहता है, तुम कहते हो मैं याद तो करती हूँ पर क्या करूं, बहुत काम करना पड़ता है, अरे सवेरे से लेके ऑफिस में जाता हूँ, फिर घर में खरीद आता हूँ, खरीदारी करनी पड़ती है, बच्चों को संभालना पड़ता है, फीस देनी है, मेहनत कर है, तो पिस जाते हैं कर्तव्य। पिस्ता कहते हैं काम करते रहो, पिसते रहो पर मुस्कराते रहो। पर मुस्कराते रहो।
बहुत
कुछ भी खाओ, संतरा है संग परमात्मा का है, तार देता है, छिलका एक ही है, एक ही छिलके के अंदर इतनी सारी फाड़ियां हैं, पर वो आपस में मिक्स ही नहीं होती, इकट्ठी रह रही हैं, उनके ऊपर एक फरिश्ते की तरह है पतला कपड़ा होता है, पतला छिलका होता है। सास रहो पर मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, हम एक घर में रहने वाले हैं, एक परिवार में रहने वाले हैं, एक लक्ष्य को रखने वाले हैं, तो घर आश्रम बन जाएगा।
बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। हाँ तो आज के बाद ये पक्का कर ले कि मैं आत्मा हूँ। बहुत अच्छी बात दीदी ने सुनाई, जैसे हमको नाम भी किसी और से मिला, एजुकेशन भी किसी और ने दिया, धन भी किसी और से मिली, किस बात के लिए अहंकार है, क्या हमारा है, क्या हम लेके जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को ये पक्का कराना है कि मैं आत्मा हूँ। और इस संसार में जिन जिन को भी देख रहे हैं, मिल रहे हैं, कारोबार में है, वो भी सभी एक एक आत्माएं है। तो
ये मेरे भाई है,
मेरे भाई है। तो आत्माभिमान स्थिति बनाना बहुत ही सहज है,
प्रैक्टिस चाहिए।
जी दीदी जी, दीदी जी और एक बात मन में आ रही है, आप भी अनुभवी है, जैसे हम कई भाई बहनों से मिलते हैं, कोर्स कराते हैं, उनको पालना देते हैं, तो उन्हों को ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, आश्रम भी अच्छी लगती है, बहनों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन जब पवित्रता की बात आती है, जब खान पान की शुद्धता आती है, तब थोड़ा सा वो पीछे हटते हैं।
अभी देखो, किसी को डॉक्टरी पढ़ाई पढ़नी है तो नेचुरली उसका जो कोर्स है वो करेगा तो डॉक्टर बनेगा। वकील कोई बनता है तो उसको लॉ पढ़ने पड़ेंगे तब वो वकील बनेगा। टेलर बनेगा तो सीखना पड़ेगा, प्रोफेशन है ना। तो ये पवित्र जीवन तो हमारा संस्कार है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम भगवान को, शुद्ध भगवान को भोग लगाते हैं, सफाई से बनाते हैं, प्रेम से चढ़ाते हैं। तो मन मंदिर है, उसमें मैं ज्योति हूँ, तो मैं अपने मन को जैसा अन्न वैसा मन भगवान की याद में बना के भोग लगा के फिर खेलाऊँ, तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता जाएगा। अब यह शुद्ध है तो शुरू शुरू में जिस समय बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया ना, उस वक़्त 3 साबुन होते थे। एक होता था लक्स, दूसरा था सनलाइट, तीसरा था लाइफ बॉय। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण। सत्य ये है कि तुम अन्न भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो, लक्षण ऐसे हो कमल दुनिया में रहते दुनिया से न्यारे। तो लक्ष सोप से जैसे कपड़ा साफ करते हो, लक्ष्य रखो। मैं मनुष्य होते हुए भी फरिश्ता और देवता हूँ। फरिश्ते का मतलब मेरा अपने से रिश्ता सिर्फ कर्म करने के लिए है, पवित्र जीवन कमल फूल समान करने का है। रचना रच ली है, अभी मुझे आज रोज प्रार्थना करते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो दे। मैं पापी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तो मूर्ख बन करके क्यों करते हो? समझ मिली है तो आत्मा में शक्ति आएगी। आत्मा को मिल गई लाइट, लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। दीवा जगाया अंधेरा मिटा, तो मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, मेरी माँ भी कहती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, ग्रैंड चाइल्ड भी कहता है तुम मात पिता हम बेरे थे। तो ये नहीं कहते तुम ग्रेट ग्रैंड फादर मेरे, हम ग्रेट चिल्ड्रन तेरे। बहू ये नहीं कहती है परमात्मा को तुम सास ससुर मेरे, हम बहू बेटा तेरे। सब कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? भाई भाई का हो गया ना। भाई एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो पहले वृत्ति बदले, बुद्धि में समझ आए, फिर वृत्ति बदले, फिर दृष्टि बदलेगी, फिर कर्म बदलेगा। तो लक्ष्य हो मनुष्य से फरिश्ता बनना है, यानी मेरा रिश्ता है व्यवहार में परिवार में बाप बाप ही है, भाई भाई है, परंतु हमारे नाते में लक्ष्य है पवित्रता की वृत्ति और दृष्टि आ गई, दृष्टि बदल गई है।
कितनी सहज रीति से दीदी ने समझाई
और समझ में आ गया कि जिसको हम समझते थे ये तो प्यार है, यू नेवर से, हमेशा कहते हैं फॉलन इन लव नेवर अपलिफ्टेड इन लव। तो देह का प्यार धोखा देता है, दुख देता है, ईर्ष्या पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर पवित्रता का प्यार है, कोई पवित्र बनता है हम उनके आगे मस्तक झुकाते हैं, क्यों? वो महात्मा जी बन गए घर छोड़ के, स्त्री को विधवा बना के चले गए, बच्चों को अनाथ बना के चले गए, हम उनको महात्मा जी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं घर में रह के महात्मा बनो, बच्चों को भी संभालो, परिवार को भी संभालो, बिजनेस भी करो, पर ट्रस्टियों के करो, गृहस्थियों के नहीं करो। कमल के फूल की तरह रहो, गुलाब के फूल की तरह बनो, सूरजमुखी बन के रहो, परमात्मा की श्रीमत है। जहाँ जहाँ सूर्य घूमता है सूरजमुखी फूल उधर घूम जाता है। तो परमात्मा की शिक्षा है बच्चे, ये थोड़ा वक्त, दुनिया की हालत बहुत खराब है और रोज कहते हो विषय विकार मिटाओ, मंदिर में एप्लीकेशन डाल के आए, फाइल उठा के वापस ले आए, घर आए फिर विकारी बन गए। अरे वाह, वहां प्रश्न किया मैं ये विकार मिटाओ, और घर में आके कहा हम विकार कैसे जीते, तो फाइल कैंसिल हो जाएगी ना, ताकत नहीं आएगी। तो ज्ञान सुनने से, समझने से, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाने से, एक कदम से हजार कदम की मदद मिलती है। घर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, रचना हमने रची है, पालना हमको करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो स्मृति में रख देना, बुद्धि को समझ मिली, आत्मा में शक्ति भरी, तो फाइट करके नहीं, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट से, समझ से, कि जो हम कहते हैं भगवान विकार मिटाओ, तो अब परमात्मा शक्ति दे रहे हैं, तो मैं अभ्यास तो करके देखूं, लक्ष्य रखूं। तो पहला साबुन है लक्ष्य। अब आपने धुलाई कर लिया कपड़ा, आपने छाया में सुखा दिया कमरे में, चमक नहीं आएगी, पीला बन जाएगा। धुलाई तो हो गया, मैल तो मिल, पर सूरज की शक्ति से जगाया, चमक गया कपड़ा। परमात्मा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान जरूर चाहिए, बिना ज्ञान के अज्ञानता नहीं मिटती है, बिना लाइट के अंधेरा नहीं जाता है, इसलिए ज्ञान भी जरूर चाहिए। तो ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेरे वेशा विनाश, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, विषय विकार खत्म हो जाते हैं, शक्ति आ जाती है। तो सनलाइट, फिर क्या हुआ, भगवान का मैं बच्चा हूँ, परमात्मा मेरा मददगार है, योग की शक्ति से शक्ति आएगी। बॉय ए बॉय लाइफ बना, लाइफ बॉय लाइफ बन जाएगी।
कोई ऐसा लाइफ सारी, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा जो तीन साबुन से आपको पवित्र बना दे। तो आप पक्का करके यहाँ तीन साबुन साथ लेके जाना, याद रहा कि नहीं,
पतित पावन हुए, पतित से पावन।
हाँ, लक्स साबुन, सनलाइट, लाइफ बॉय, ठीक है। आजकल उनको कोई पूछता नहीं,
पहले लक्ष्य पक्का हो, फिर ज्ञान ही पूरा हो जी, और फिर जो है जीवन बनाने का लक्ष्य।
हाँ, तो टाइम हो चुका है, तो दीदी जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और दीदी जी जैसे जैसे हमें समझा रहे थे, वो कोई बात पढ़ के सुन के सुनी सुनाई बातें लग रही थी, जीवन के अनुभव की बातें दीदी ने कितने अच्छे से कहा। हाँ देखो, कांट का कांट चुभता है तो रोते हैं, सांप काटता है तो सोते हैं, और काम अगर काटा तो सब कुछ खोते हैं। तो इसीलिए विकारों से हमें मुक्त होना है, पवित्र बनना है, क्योंकि हमारे लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना। तो हम सभी उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ से जाए, जैसे पहला दिन ही आप सबको बताया था कि हम इंसान बनकर के आए हैं, फरिश्ता बनकर के जाएंगे, और भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनेंगे। और हमारे बड़े, हमारी दीदियाँ जिन्होंने हमारे आगे उदाहरण है कि वो उनकी चलना, उनकी बोलना, उनकी देखना कैसे महसूस हो रहा है, एक फरिश्ते जैसे है। हाँ, बचपन में घर में नानी दादी होते थे तो लड़कियाँ थोड़ी तेज चले तो बोलेंगी तुम कैसे चलती हो, हाँ धरती माँ भी डर जाएगी, पर हमारी दीदियाँ तो अपने जीवन में नेचुरल अपना चलन को फरिश्ते जैसे बना लिए। तो फिर एक बार सभी जोदा ताली से, दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। टाइम पर भी पंचुअल है दीदी जी, टाइम पर आए और हम सबको इतने प्यार से सावधानी दी।
तो इसलिए फरिश्ते का मतलब अपने साथ पहले रिश्ता चेंज करो, मैं फलाना हूँ, मेरा संस्कार ऐसा है, तो हमने पुराने संस्कारों से, आदतों से, पक्का पक्का रिश्ता बना लिया है। कहो आज की मुरली में था, कोई कहता है मैं तो जोश से बोलता हूँ ना, मेरी आदत ऐसी है, रोब करने की तो मेरे में ये आदत है, क्रोध तो मेरे को अपने आप ही आ जाता है, परंतु ये मेरे जीवन में विघ्न है, यह हमारे जीवन में बाधा है। तो मुझे, मैं परमात्मा की संतान हूँ, पतित पावन परमात्मा शिव का बच्चा हूँ, तो ये कदम उठाने में कल्याण समाया है। मुक्तेश्वर का बच्चा हूँ, बंधन से मुक्त होने वाले हूँ, गति सदगति दाता के संतान हूँ, तो दुर्गति वाला जीवन से मुक्त होंगे तो सदगति में सदा खुश रहेंगे, खुश नसीब आत्मा हूँ। करोड़ों में से कोई कोई भगवान की बात को समझता है, उन करोड़ों में से मैं एक हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान, वाह वाह, वाह बाबा, वाह बाबा, कहा तो बच्चा बन गया ना, बच्चा बचपन, अभी 2 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा, 8 दिन का बच्चा, जब से जागृति आई नया जीवन आ गया। तो ऐसा पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई का माँ का पार्ट, कोई का बाप का, कोई का भाई का, ये बेहद के ड्रामा में खेल खेल रहे हैं। अब घर चलने का समय है, इसलिए कपड़ा छोड़ के जाना है। विनाश की तैयारी तो देख रहे हैं, जबरदस्ती शरीर छूटे क्यों नहीं, आत्मा आनंद स्वरूप होकर के, आत्म तजे काया तैसे, जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे, जैसे कि पुराना कपड़ा उतरता है। तो चलते फिरते उठते बैठते ये कपड़ा पहना हुआ है, मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैंने कपड़ा पहना हुआ है, उसकी गिफ्ट मेरे पास है, आँखें हैं, कान है, जबान है, उसको मैं गुण शक्ति, गुण ज्ञान और परमात्म शक्ति से यूज करना है। आँखें मिली इसीलिए हैं, दूसरे को आत्मा देखने के लिए। तीसरा नेत्र खोल, भगवान ने खोले, वो कहते हैं तीसरा नेत्र शंकर जी ने खोला और सृष्टि का विनाश हुआ। तो हमारे अंदर की जो सृष्टि है, हमने अंदर नरक बसा के रख लिया, हमने अपने अंदर दुख बसा लिया है, हमारे अंदर पाप कर्म बसा लिया है, तीसरा नेक खुला, उस दुख की दुनिया का विनाश होने। तो इसीलिए आज से पक्का करके कर जाओ, दुख लेना नहीं है। हम कहते हैं किसको दुख देते नहीं है, पर लेते इतना है जो उल्टी करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा ले लेते हैं। तो तेरे सामने भी बोलती हूँ, मेरे सामने, सबके सामने बोलती थी, दर्द होता रहता है, दिल दर्द होता रहता है। इसीलिए अब मुझे आत्मा को इस सुंदर जो सौगात मिली है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिली हैं, ये दिव्य कर्म करने के लिए मिली हैं, देवता बनने के लिए, और फरिश्ता बनेगा इससे रिश्ता बदली करूं। मेरा नहीं है ये, ट्रस्टी है, मैं मेहमान हूँ यहाँ, इस मकान में मेहमान हूँ, तो महान कर्म कर्म करके जाऊँ, अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे, कर्म अच्छा करेंगे। ओके,
थैंक यू दीदी। अभी आप जितने भी सेशन सुने, अटेंड किए, तो जैसे बताया पहले ओम शांति शब्द, दूसरा ऐसे पक्का कर लीजिए, कोई भी क्लासेस होती है या पूरा होती है तो परमात्मा की याद से ही शुरू होती है, परमात्मा की याद से ही पूरा करते, तो ये आपके जीवन में पक्का नियम हो जाए। घर से कहीं भी बाहर जाए, बाबा का चित्र रखे, ट्रांसलेट रखे, बाबा को याद करे, फिर साथ लेकर के निकले, फिर घर वापस आए, फिर बाबा के सामने खड़े होकर के थैंक्स दे, फिर दूसरे कारोबार में लगे, ये 2 चीज़ें पक्का करके जाना है, ठीक है। ओम शांति। चलिए अभी बाबा की याद।